శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితమేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీ గురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీ రూపం సాగరజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణపదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామీనితి నామినే నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణే హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యైవ చ పదితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసది గౌర్భక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే
ఆజ్ హా నృసింహ చతుర్దశి ఉత్సవ మే ఆప్ సబ్కా స్వాగత్ కర్తే హై హమ్ నృసింహ మహామంత్ర కహతే బోలెంగే పహలే సబ్ లోగ్ పీచే దోహరాని కీ కోషిష్ కీజియే ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణు జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యుర్మృత్యుం నమామ్యహం ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణు జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యుర్మృత్యుం నమామ్యహం ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణు జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యుర్మృత్యుం నమామ్యహం ఇస్మే హమ్ భగవాన్ నరసింహదేవ్ కు ప్రణామ్ కర్తే జో ఉగ్ర హై వీర హై ఔర్ జో సబ్ ఓర్ సే జ్వలంత హై జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం ఔర్ జో మంగళమ హై భీషణ లేకిన్ మంగళమ హై ఎసే భగవాన్ నరసింహదేవ్ కు హమ్ ప్రణామ్ కర్తే హై తో ఆజ్ బహుత్ హీ భాగ్య కా దిన్ హై హమ్ నృసింహ చతుర్దశి పే యహాన్ పర్ ఆయే హై తో యే భగవాన్ నరసింహదేవ్ ఖాస్ కర్కే వైష్ణవ్ కే జీవన్ మే బహుత్ హీ మహత్వపూర్ణ హై ఔర్ ఖాస్ కర్కే కలియుగ్ మే జహాన్ క్యూంకి ఐసే ఏక్ అవతార్ హై ఐసే ఏక్ అవతార్ మే భగవాన్ ప్రకట్ హుయే కి జో ఖాళీ సిర్ఫ్ భక్త్ కే లియే ప్రకట్ హుయే బాకీ అవతారో మే భగవాన్ అలగ్ అలగ్ కార్య లేకర్ ఆతే హై భగవాన్ శ్రీ రామచంద్ర హై భగవాన్ అలగ్ అలగ్ వరాహ రూప్ మే హై లేకిన్ ఏ ఏక్ అవతార్ ఐసా హై జిస్మే ఏక్ హీ కారణ హై ఏక్ హీ వజహ హై కి అప్నే భక్త్ కా రక్షణ కర్నే కే లియే ఆయే హై ఇస్లియే శ్రీల ప్రభుపాద్ జబ్ ఇస్కాన్ కి స్థాపనా కి ఇస్కాన్ మే छः आरती होती है मंदिर में, मंगल आरती से लेकर संध्या आरती तक छह आरती होते हैं, तो छह आरती में श्रील प्रभुपाद में आरती के बाद नरसिंह आरती गाने का नियम बनाया। जब भी आरती होगी, फिर मंगल आरती होगी या फिर राजभोग आरती होगी, संध्या भोग आरती होगी, जो भी आरती होगी उसके बाद नरसिंह आरती गाना है, ये नियम बनाया। क्योंकि कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण है भक्त का रक्षण करना, और वो भी किस स्तर पे, भक्त का भक्ति का रक्षण करना। इसलिए भगवान नरसिंहदेव बहुत ही प्रसिद्ध है, और भगवान नरसिंहदेव की जो लीलाएं हैं, प्राकट्य हैं, अलग अलग कल्प में अलग अलग प्रकार से बताया गया है। लेकिन यहाँ पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं कि भगवान अगर समदृष्टि है, समहम सर्वभूतानां, लेकिन हम देखते कि कई बार भगवान प्रकट होते हैं, लीला करते हैं, देवताओं की बाजू लेते हैं और असुरों का वध भी करते हैं, ऐसा क्यों होता है? परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, और ख़ास करके जो युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि का संवाद है, जो अश्वमेध यज्ञ करने के बाद रास यज्ञ जब युधिष्ठिर महाराज ने किया, और युधिष्ठिर महाराज वहाँ पर नारद मुनि से पूछते हैं, इस रास यज्ञ के बाद मैंने जो प्रसंग देखा बड़ा अचरज था, आश्चर्यचकित था, क्योंकि वहाँ पर जो शिशुपाल है भगवान का इतना द्वेष करता है, द्वेषी है, और इतना ही नहीं, जब ये शिशुपाल का जन्म हुआ, जन्म होते ही बच्चा कुछ पहले बोलता है, तो जैसे ही उसने पहला शब्द बोला भगवान कृष्ण को उन्होंने बुरा कहा या गाली दी सर्वसामान्य भाषा में, शिशुपाल इतना द्वेष भरा था, लेकिन इतना निंदा करता था, लेकिन भगवान कृष्ण, क्योंकि जो बुआ थे भगवान कृष्ण के, उनके वो पुत्र थे शिशुपाल, तो उन्होंने वचन लिया था भगवान कृष्ण से कि मुझे पता है कि, क्योंकि जब शिशुपाल का जन्म हुआ तभी आकाशवाणी हुई कि कृष्ण इनका वध करेंगे, तो बुआ जो है उन्होंने कहा कि देखो मेरा पुत्र आपके हाथ से मरने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसे क्षमा कर दो, उसके मारोगे नहीं। तो कृष्ण कहते कि ऐसा कैसे हो सकता, जब आकाशवाणी हुई है कि मेरे हाथ से उसे मरना है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ, हाँ लेकिन मैं जब तक वो एक साथ 100 अपराध नहीं करेगा तब तक मारूंगा नहीं। और रास यज्ञ बाकी कई बार उन्होंने 10 बार बुरा कहा, कहीं 50 बार बुरा कहा, तो भगवान ने माफ कर दिया, चलो छोड़ दो, क्योंकि 100 हुआ नहीं है। तो जब रास यज्ञ के समय शिशुपाल इतना, क्योंकि भगवान को जो अग्र पूजा का मान मिला, जो भीष्म द्रोण सारे बड़े वरिष्ठ जो थे उन्होंने भगवान कृष्ण को अग्र पूजा का मान दिया, लेकिन शिशुपाल का द्वेष और बढ़ गया। होता है जब प्रचार भी करते हैं तो कई बार भगवान का जब प्रचार कार्य होता है तो भक्त को आनंद होता है और जो द्वेषी होते हैं क्रोधित हो जाते हैं, तो वैसे यहाँ पर भी हो रहा था। और शिशुपाल को भगवान कहते कि शिशुपाल 90 हुए हैं, बस कर दो, तू क्या कर लेगा और दो बुरे भले शब्द कहे, 95 हुए, 95 हो गए तो और ज्यादा शिशुपाल क्रोधित होगा, और 99 हुए हैं, कृष्ण कहते हैं शिशु अब तो बंद करो बस, फिर भी शिशुपाल इतना क्रोधित था कि उसने 100 पूरे कर दिए और भगवान कृष्ण से सुदर्शन उन्होंने भेजा और शिशुपाल का शिर छेद कर दिया, वध कर दिया। लेकिन ये तो ठीक है, वो तो होना ही था, लेकिन उसमें युधिष्ठिर महाराज कहते इसमें आश्चर्य की बात ये थी कि उससे जो ज्योत निकली, उसका जो जीवात्मा तो ज्योत थी, जीवन ज्योत थी, वो निकल कर कृष्ण के शरीर में विलीन हो गए, ये कैसे हो सकता है? जो जीवन भर इतना द्वेष किया भगवान से, वही उसके जीवन जो कृष्ण से कैसे मिल सकते हैं? तो इसलिए नारद मुनि कहते कि इस संसार में जो सर्व सामान्य व्यक्ति होता है उसकी जब कोई स्तुति करता है तो उसको अच्छा लगता है, उसकी कोई निंदा करता है उसे बुरा लगता है, ये सर्व सामान्य व्यक्ति के जीवन में होता है, लेकिन भगवान जो है ये सबसे परे है, निंदा स्तुति यश अपयश रजगुण तमगुण ये सबसे भगवान परे है। ऐसा नहीं कि इसने द्वेष किया है तो भगवान उसके लिए बुरा करेंगे और कोई बहुत स्तुति कर रहा है तो भगवान उसका अच्छा ही करेंगे, नहीं, भगवान समदृष्टि है। लेकिन उसकी जीव की क्या इच्छा है वो भी भगवान वहाँ पर देखते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि गोप्या कामात भयात कंसो द्वेषा चैद्यो दया नृपो। और इस तरह से जो संबंधात यदु, जो यदु थे ऋषि जो थे उन्होंने संबंध था भगवान से, तो उससे भगवान से उनका लगाव हो गया। गोपियाँ थे कामाद, जो उनके भगवान से प्रेम करना चाहते थे, उससे भगवान का प्रेम प्राप्त कर लिया। जो कंस भय से भगवान का स्मरण करता था, एक बार उसकी जो अस्थि प्राप्ति जो दो रानियाँ हैं वो आ गए और कौन जोर जोर से चलाता है, अरे उनको पकड़ो उनको पकड़ो, एक कृष्ण बलराम आ रहे, कहते ये तो आपकी रानी आ रही, कौन कहते कृष्ण बलराम आ रहे। लेकिन वो भय से इतना भगवान को स्मरण करता था। वैसे ये द्वेषा चैद्यो, जो चेदी राज जो था शिशुपाल, वो द्वेष से भगवान का स्मरण कर, एक कोई योगी कोई ऋषि इतना स्मरण नहीं कर सकता उतना शिशुपाल स्मरण करता, लेकिन द्वेष से करता था। और जो पांडव वो सेवा के रूप में प्रेम करते थे, और जो भक्त है नवविधा भक्ति का आचरण करके भगवान का स्मरण करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, लेकिन जो वेन राजा था ये भी भगवान का ये द्वेषी था, लेकिन वो नरक चला गया। शिशुपाल को मुक्ति मिल गई और वेन को क्यों नरक मिला, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि वेन जो था वो भगवान का स्मरण नहीं करता था। शिशुपाल भरे द्वेष में लेकिन स्मरण करता था, वेन जो था वो द्वेष करता था लेकिन स्मरण नहीं करता था। इस प्रकार से भगवान को अलग अलग रूप से कोई स्मरण कर सकता। इसलिए भगवान का जब वर्णन करते हैं, ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाम गतोपि वा ये स्मरित पुनरिकाक्ष सब बाह्य अभ्यंतर सूचि। ओम अपवित्रो पवित्रो वा, कोई पवित्र है या अपवित्र है, यह स्मरित पुनरिकाक्ष, जो कमल नयन भगवान है उनका जो कोई अगर स्मरण करता है वो सब बाह्य अंतर सूचि, बाह्य और अंतर दोनों स्तर पे वो शुद्ध हो जाता है। कोई पवित्र है अपवित्र है कोई भी हो स्मरण, जैसे कोई भी कभी लोग कहते हैं अरे हम लोग गीता प्रचार के लिए जाते हैं तो लोग कहते हैं हम लोग कैसे भगवान का स्मरण कर सकते हैं, जप नहीं कर सकते, गीता को घर में नहीं रख सकते हैं क्योंकि हम तो खाते हैं। अभी क्या खाते आपको पता है? हम तो पीते हैं तो कैसे घर में रख सकते गीता को? हम खाते पीते वाले लोग हैं तो घर में गीता को नहीं रख सकते, माला नहीं जप कर सकते। तो कभी कभी हम कह देते हैं कि देखो सूर्य प्रकाश जो होता है ना, तो सूर्य प्रकाश जब किसी गंदी चीज़ पे गिरता है पड़ता है तो गंदगी की वजह से सूर्य खराब नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से वो गंदगी शुद्ध हो जाती है। तो अपने घर में भला कोई अशुद्ध है, अपने जीवन में कुछ अशुद्धता है अभद्र है, लेकिन भगवान का स्मरण करते हैं गीता को पढ़ते हैं या जप करते हैं उससे वो शुद्ध होता है, जो अशुद्ध चीज़ें वो शुद्ध हो जाते हैं, न कि अपनी अशुद्ध आदतों से भगवान का नाम कोई अपवित्र हो सकता है। पवित्र करने के लिए यही एक मार्ग है। तो यहाँ पर जय विजय जो भगवान के विशेष द्वारपाल है वैकुंठ में, कौन है शिशुपाल, और क्योंकि नारद में उनका जीवन चर्चा करते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र है चतुष कुमार, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, वो इतने शुद्ध है उनको कोई भौतिक भावना ही नहीं है और वो भौतिक भावना को लाना भी नहीं चाहते हैं अपने जीवन में। इसलिए उन्होंने अपने आप को 4 साल से बड़े बनाई नहीं दिया, बनने नहीं दिया, तो छोटे बालक ही रहे 4 साल के। और उनके जो वस्त्र थे वो बर्थडे सूट होता था, पता है बर्थडे सूट क्या होता है, कोई कपड़ा नहीं होता है शरीर के ऊपर। तो वैसे अवस्था में वो सारे संसार में सृष्टि में घूमते रहते थे, और एक बार ऐसे घूमते भ्रमण करते करते वैकुंठ चले गए। तो वैकुंठ का जो अंतिम द्वार था वहाँ पर जय विजय द्वार पे खड़े थे, तो उन्होंने उनको रोक दिया। जैसे कई कथा होती है तो बच्चों को अलग से संभाला जाता है, यहाँ तो बहुत अच्छे बच्चे हैं शांत बैठे कई जगह पे अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है बच्चों के लिए, तो क्योंकि शायद कोई मस्ती कर देंगे बीच में कुछ आवाज़ करेंगे, इसलिए तो ये द्वारपाल जो है ये भी सोचने लगे कि ये तो बच्चे है वो कहाँ समझ पाए। ऑफकोर्स ये तो भगवान की इच्छा थी जो होना था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने रोक दिया कि बच्चे वैकुंठ में जाएंगे कुछ उद्यम करेंगे, तो उनको अजाने नहीं दिया। लेकिन ये जो चतुष कुमार थे इतने महान सृष्टि के सबसे ब्रह्मा जी के पुत्र है, उनको क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि आप भेद करने की वृत्ति आप में है जय विजय में, तो आप वैकुंठ में रहने पात्र नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उनको शाप दे दिया, कहा कि आप वैकुंठ में रहने, क्योंकि चतुष कुमार इतने शुद्ध थे कि भगवान की इच्छा जानते थे कि भगवान चाहते हैं आगे कुछ लीला हो, उनकी भगवान की इच्छा जानकर उन्होंने क्या किया, उनको शाप दे दिया। तो भगवान की क्या इच्छा थी, भगवान को अभी थोड़ा युद्ध करने की इच्छा थी, हाथ में थोड़ा खुजली आ रही थी, तो कुछ को मारपीट करनी है तो वैकुंठ में किसके साथ कर सकते हैं, तो चलो मारपीट करने तो नीचे संसार में जाना है, लेकिन संसार में जाकर भी इस भौतिक संसार में किसे युद्ध कर सकते हैं, किसके साथ भगवान फाइट कर सकते हैं, तो अपने को नीचे भेजना पड़ेगा। तो जय विजय को नीचे भेजने की योजना बनाई, तो उन्होंने शाप दे दिया। तो भगवान आकर जब चतुष कुमार से वो प्रार्थना करते हैं या क्षमा याचना करते हैं, तो चतुष कुमार कहते हैं भगवान आप तो स्वराट है, आप इस शाप को ले भी सकते हैं या मना भी कर सकते हैं, इनको मुक्त भी कर सकते हैं। बोले नहीं नहीं, आपने अगर शाप दे ही दिया तो ठीक है, ये होना ही है। तो उनको असुर बनने का शाप मिला। तो पहले इसमें जो जय विजय थे वो कौन बने, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, और हिरण्याक्ष ने इतनी शक्ति थी कि उन्होंने ये जो भूमि देवी है जो पृथ्वी है उसको पूरा पाताल में भेज दिया, और वराह रूप में आकर उन्होंने वराह देव ने उनको ऊपर उठाया और हिरण्यकश्यप का वध किया, और हिरण्यकश्यप जो प्रह्लाद के पिता थे उनको संहार करने का स्वयं भगवान नरसिंहदेव को आना पड़ा। वही जय विजय पर वापस दूसरे जन्म जब आए तो वहाँ पर वो मुनि ऋषि श्रवा विश्रावसर और केशिनी इनके पुत्र बने रावण और कुंभकर्ण, और वहाँ भगवान श्री रामचंद्र आकर उनका वध किए। और तीसरे जन्म जब आए तो वो दंत वक्र और शिशुपाल बनकर आए, और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनका वध हुआ। फिर वापस जाने के जब समय आया फिर उन्होंने सोचा अब तो ये जो हमने तीन शाप थे वो तो हो गए, लेकिन अभी जाना है, लेकिन कलयुग में कौन आ रहे हैं, स्वयं गौरांग महाप्रभु आ रहे हैं, सब अवतार सार शिरोमणि, सारे अवतारों के सार शिरोमणि जो है वो गौरांग चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं। तभी और एक युग के लिए रुक जाते हैं, और वो रुक गए, और वहाँ पर जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप रावण कुंभकर्ण दंतवक्र शिशुपाल इनके सारे जितने अवगुण थे पाप वृत्तियाँ थी सारे इकट्ठा करके वो कौन बने, जगाई मदाई बने, और फिर गौरांग महाप्रभु द्वारा उनका उद्धार हुआ। तो इस प्रकार से जब इस लाह में हिरण्यक्ष का वध हुआ तो हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हो गया, और ये हिरण्यकश्यप कहने लगे जो विष्णु है ये माया के द्वारा भ्रमित हो गया है, इसने मेरे भाई का वध कर दिया है, तो मुझे कुछ भी करके ये विष्णु को मारना ही है। और इस प्रकार से इतना क्रोधित होकर वो अपने सारे सैनिकों को राक्षसों को भेजने लगा, कहेंगे जाओ और सारे जितने धार्मिक स्थल है उसको नष्ट कर दो, सारी गौशालाओं को नष्ट कर दो, जितने जहाँ पर हरे भरे खेत है उसको जला दो, जहाँ पर अभी आश्रम दिखाई दे ऋषि मुनियों को ख़त्म करो, जहाँ पर गुरुकुल दिखे सबको नष्ट कर दो। इस प्रकार से वो सारे असुरों को भेज कर उन्होंने दस नष्ट करना शुरू कर दिया और आकर अपने जो कुटुंबीय जन थे, हिरण्यक्ष की पत्नी थी, अपनी माता थी, दीदी थी, उनके पुत्र थे, सबको आकर वो सांत्वना देने लगा। कहने लगा कि देखिए इस संसार में जो भी प्राणी आता है, जीव आता है, उसको वापस तो जाना ही है। जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत से चाहिए, कौन कह रहा है? हिरण्यकश्यप कह रहा है। तो ऐसा नहीं कि फिलोसफी असुरों को पता नहीं है, उनको भी पता है लेकिन पालन नहीं करना है। तो ये हिरण्यकश्यप आकर उनसे कहता है कि इस संसार में जो भी प्राणी आता है, जो भी जीव आता है, एक क्षणभंगुर जीवन होता है, कुछ समय के लिए इस संसार में आते। जैसे समंदर में कोई लहरें के ऊपर कभी कभी दो लकड़ी एक साथ आती है और कुछ क्षण के लिए साथ में रहते हैं, वापस एक दूसरे से जुदा हो जाती, वापस कभी ना मिलने के लिए। जैसे हम लोग बस में रेलवे में भ्रमण करते हैं, कुछ स्टेशन पे एक साथ आते हैं और यात्रीगण एक साथ आते हैं, नाश्ता करते हैं, एक साथ दूसरे से बातें करते हैं, वापस अपने अपने बोगी में जाकर बैठते हैं, वापस कभी ना मिलने के लिए। तो इस संसार में कोई भाई बनता है, कोई बहन बनता है, कोई पति बनता है, कोई पत्नी बनता है, कोई माँ बनता है, कोई पिता बनता है, ये सारे संबंध जो है इसी प्रकार से है। इस संसार में आते हैं, कोई 50, 60, 70, 100 साल के लिए एक साथ रहते हैं, वापस बिछड़ जाते हैं कभी न मिलने के लिए। अब कुछ यहाँ पर कहा जाता है 7 जन की जोड़ी है, वो अलग बात है, कोई चाहता भी नहीं कलयुग में। लेकिन ये संसार का जो तत्व है वहाँ पर वो उन्हें बताता है। और ये 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि में जीव भ्रमण करते रहता है और अलग अलग योनि में वो 10 लाख प्रकार के जलचर बनता है, 30 लाख प्रकार के पंछी बनता है, 20 लाख प्रकार के पशु बनता है, 4 लाख प्रकार के मानव बनता है, कहाँ कहाँ 84 लाख योनि में भ्रमण करते रहता है। और इस प्रकार से व्यक्ति जो है दुख भुगतते रहते, सबसे बड़ा दुख जो संसार में होता है अपने प्रियजनों से दूर होना। किसी भी योनि में हो, कुत्ता भी हो, उसका भी जब बच्चा मर जाता है वो कुतिया महीनों भर तक गाड़े के पीछे भागते रहते हैं, गाय का बछड़ा मर जाता है तो गाय जो इतने ज़ोर से चिल्लाती रहती है, भागते रहते हैं। तो हर जीव जो है अपने प्रियजन बिछड़ते हैं दुखी होता है। इस प्रकार हिरण्यकश्यप उनको एक स्वर्गीय राजा की स्टोरी बताता है, किस प्रकार से उसका देहांत होता है, सारी रानी आकर रोने लगती है और शाम को उसके अंत संस्कार करने हैं राजा के, उस स्वर्गीय राजा के, लेकिन वो रानियां शरीर छोड़ते नहीं है। तब वो आकर यमराज आकर छोटे बच्चे का रूप धारण करते हैं और उनको समझाते हैं कि इस संसार में कितना व्यक्ति आसक्त हो जाता है, आप रो रही है कि आप राजा चले गए हमारा क्या होगा। तो यमराज बच्चे के रूप में कहते हैं देखो आप इतनी बड़ी रानियां हैं, स्त्रियां हैं, मुझे देखो छोटा 7-8 साल का बच्चा है और मैं यहाँ पर जंगल में घूमते रहता हूँ, मुझे खाना भी मिल जाता है और प्राणियों से भी रक्षण हो जाता है। जिसको भगवान ने रक्षण देना है तो उसको कोई मार नहीं सकता है और जिसको मरना है सारा संसार भी उसको बचाने आ जाए जयद्रथ जैसा, फिर भी उसको कोई बचा नहीं सकता है। तो इस संसार में जो भी है जातच ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत सच, जब हमारा समय आ गया तो कोई बच नहीं सकता है। इस प्रकार से समझाते हैं और अलग अलग प्रकार से उनको जो हिरण्यकश्यप अपने कुटुंबी जनों को कहते हैं और इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का अंत्य संस्कार करके हिरण्यकश्यप जो है अपना ध्येय था क्या था, उसको विष्णु को मारना था, भगवान विष्णु को मारना, कि उन्होंने मेरे भाई को मतलब व्यक्ति फिलॉसफी बोलता है लेकिन आचरण नहीं होता है। फिलॉसफी बोल दिया क्षमाशील होना चाहिए, दया होना चाहिए, ये सब टेम्पररी, ये सब कुछ बोल दिया उन्होंने लेकिन पालन नहीं है। ये होता है, इसलिए मराठी में कहावत है भंग है कि बोले तैसा चाले त्याचे वंदा भी पाओले, जैसा बोलता है जैसे आचरण करता है तो उसके हमें चरण छूने चाहिए, तो उसे साधु कहते हैं, उसे वैष्णव या अच्छा सज्जन कहते हैं। तो लेकिन हिरण्यकश्यपु ने जो क्रोध था मन में, खाली समझाने के लिए फिलोसफी समझा दिया, क्रोध को भुलाने दिया था, क्षमा नहीं आया था अंदर, और हिरण्यकश्यपु मंदार पर्वत पे चला जाता है और इतना कठोर तपस्या करता है। स्वर्गीय 100 वर्षों तक ये हिरण्यकश्यपु कठोर तपस्या करता है और इतनी तपस्या होती है कि पानी खाना सब कुछ छोड़ देता है, सांस भी छोड़ देता है और खाली ओ ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, इस प्रकार से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए 100 स्वर्गीय समय हमारे पृथ्वी के 10,000 वर्षों तक वो तपस्या करता है। और जब इतनी तपस्या भर जाती है कि उसके मस्तक से अग्नि ज्वाला बाहर निकलने लगती है और वो अग्नि ज्वाला जो है खाली जंगल को नहीं, ऊंचे जो लोक है स्वर्ग लोक तप लोक वहाँ तक उसकी अग्नि की ज्वाला भड़कती है और वहाँ जो ऊपर ऊंचे ऊंचे जो लोग हैं वहाँ तक जो स्वर्ग जो देवता हैं उसको उसकी आग उसके तप्तता लगने लगती है और सारे देवता जो है त्रस्त होकर भगवान विष्णु के पास आते हैं और उनको ब्रह्मा जी के पास आते हैं, उनसे कहते हैं कि आप कुछ करो, आपको प्रसन्न करने के लिए हिरण्यकश्यपु इतनी कठोर तपस्या कर रहा है और इतनी तप्त उष्णता इतनी बढ़ गई है कि ऊंचे ऊपर के जो लोग हैं वो भी गर्म होने लगे हैं, आप कुछ तो कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते चिंता मत करो, मैं जाकर कुछ व्यवस्था करता हूँ। फिर ब्रह्मा जी अपने हंस वहाँ पर वाहन ऊपर जाकर ढूंढने लगते हैं, जो मंदा पर्वत की जो खाई में वो तपस्या कर रहे हैं वो दिखता नहीं, इतना जंगल बढ़ गया है और जंगल ही नहीं हिरण्यकश्यपु भी पूरी तरह से उसका जो शरीर था नष्ट हो चुका था, चींटियों ने पूरी तरह से उसके मांस का बोटी बोटी ख़त्म कर दिया था, चींटी ने पूरी तरह से उसका जो खून जो पी पी कर नष्ट कर दिया था, खाली क्या बचा था, अस्थि बचा था। हिरण्यकश्यपु खाली अस्थि मतलब वो जो युग था उसमें प्राण जो है अस्थि में भी रह सकते थे, अभी हमारे जो प्राण में है अस्थि में नहीं रह सकते हैं, अभी हमारे प्राण जो है अन्न में रहते हैं, अन्न छोड़ दिया आदमी खत्म हो जाता है, 10, 15, 20, 50 दिन कुछ दिन तक रह सकता है जितनी क्षमता है, लेकिन अन्न में प्राण है, लेकिन वो जो जो तपस्या करते थे सत्यु के समय तो अस्थि जो हाड़ जो होते हड्डियाँ थी उसमें भी प्राण को बचा के रख सकते थे। हिरण्यकश्यप के सब कुछ मांस जो खून है सब कुछ नष्ट हो चुका था, खाली अस्थियों में प्राण बचे थे। तो जब ब्रह्मा जी वहाँ पर पहुँचे तो पूरी तरह से वो मिट्टी का लगा हुआ था, उसे क्या कहते हैं वारूढ़, हिंदी में क्या कहते हैं दिमाग, तो वो दिमाग लग चुका था पूरा और उसका पूरा टेकड़ी बन चुका था, तो उसमें ब्रह्मा जी ने देखा उसमें से अग्नि निकल रही है, ज्वाला निकल रही है, तो वहाँ जाकर ब्रह्मा जी अपने कमंडलों से पवित्र जल छिड़कते हैं और पूरा मट्टी बाहर आकर हिरण्यकश्यपु के शरीर पे जैसे वो जल गिरता है तो उसका शरीर पूरी तरह से तेज पुंज ऐसा एक जवान एक नवयुवक की तरह हट्टा कट्टा शरीर और सुंदर एक तेजस्वी ऐसा शरीर बनता है। अरे देखकर अपने शरीर को जैसा ही वो देखता है हिरण्यकश्यपु बड़ा प्रसन्न हो जाता है, इतना ही नहीं मेरी तपस्या की सफल हुई है ये देखकर उसकी आंखों से आनंद के आंसू आने लगते हैं हिरण्यकश्यपु के, बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु से कहते हैं अरे हिरण्यकश्यपु आपने इतनी कठोर तपस्या की है कि ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते, इतनी कठोर आपने तपस्या की है कि खाली प्राण, अपने खाली अस्थि में प्राण बचे थे, तो आपको क्या वर चाहिए? हिरण्यकश्यप का एक ही था, मुझे ऐसे वर चाहिए ताकि सारे संसार का साम्राज्य मेरा हो, कोई मुझे मार ना सके, सब कुछ मैं जैसा चाहूँ वैसा मुझे करने को मिले। जब मैं सारे सृष्टि का पूरी तरह से नियंत्रक बन जाऊँगा, जो पाप करने वाले हैं उनको स्वर्ग में भेजूँगा, जो पुण्य करेंगे उनको नरक में भेजूँगा, इस प्रकार का दुनिया को मैं चलाऊँगा, इस प्रकार के से संसार, ये उसका धारणा थी, ऐसे वर को वो चाहता था, ऐसे अपने जीवन को बिताना चाहता था। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी पूछते कि हिरण्यकश्यप, मैं आपकी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ, वत्स वर मांगो, तो नरसिंह देव तैयारी के साथ पूरी लिस्ट बनाकर था। तो सबसे पहले हिरण्यकश्यप कहते हैं मुझे अमर बनना है, ये असुरी वृत्ति होती कि इस संसार में मरना नहीं है, बस यहाँ पे रहना और बस इंद्रिय भोग करते रहना है, करते रहना है, अंत तक करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन भगवान, आपने ब्रह्मा जी कहते हैं कि हिरण्यकश्यप, मैं खुद अमर नहीं हूँ, मेरा भी जो जीवन है 100 साल का है, आपको हमारे 100 साल और ब्रह्मा जी के 100 साल में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन वो भी 100 साल जीते हैं। कितने 100 साल ब्रह्मा जी के? हमारा एक कलयुग जो है 4,32,000 वर्ष का होता है, उसका डबल करो 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग है, उसमें और एक कलयुग ऐड करो 12,96,000 का त्रेता युग होता है, उसमें और एक कलयुग ऐड करो 17,28,000 का सतयुग होता है, ऐसे 71 चतुर्युग मतलब एक मन्वंतर होता है, और ऐसे 14 मन्वंतर मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ऐसे 1 महीना और 12 महीना और ऐसे 100 साल ब्रह्मा जी जीते हैं। तो इसलिए हमारा जीवन कितना है, ब्रह्मा जी के सामने क्षण भंगुर है, जैसे कैमरे का फ्लैश होता है ना, बस इतना ही, इसमें क्षण भंगुर जीवन के लिए इतना क्यों रोते रहना है ना, आ सकते। तो यहाँ पर हिरण्यकश्यप पता है कि अभी अमरत्व का तो वर नहीं मिल रहा है, लेकिन जितने भी मरने की पॉसिबिलिटीज है उसको नष्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हिरण्यकश्यप कहते हैं कि अगर ठीक है आप अमरत्व का वर नहीं देते हैं, तो मुझे ऐसा वर दो कि आपके सृष्टि में आपने बनाया हुआ कोई भी जीव से मेरी हत्या ना हो, मेरा मृत्यु ना होना, ये होना चाहिए। मतलब जो भी संसार में ब्रह्मा जी से बनाया, तो उनसे मरना नहीं, मतलब कोई मार ही नहीं सकता है ना, तो आपके सृष्टि में आपके द्वारा जो बनाए उससे मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए, और आगे कोई देवता से नहीं, दानव से नहीं, कोई पशु से नहीं, मानव से नहीं, कोई अपने दिन में नहीं, रात में नहीं, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं, ऊपर नहीं, जमीन पे नहीं, शस्त्र से नहीं, अस्त्र से नहीं, इस पर बचा के मरने के लिए कैसे मार सकते हैं। तो हिरण ने कहा सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी मरने की, सब कुछ उसने वर मांग लिया, और ब्रह्मा जी इतनी कठोर तपस्या की थी, ब्रह्मा जी मना भी नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, तथास्तु, जैसे तथास्तु कहा, हिरण्यकश्यप इतना खुश हो गया, तुरंत वहाँ पर आ गया अपने नगरी में, और वहाँ पर सारे अत्याचार शुरू कर दिए। सबसे पहले जो पहले क्षेत्र थे देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया, और सारे देवताओं को अपने महल में बंदी बनाकर रख दिया, और सबको किचन में सब्जी काटने के लिए रख दिया, इंद्र चंद्र सब कोई सब्जी काट रहे, कोई भूमि, इतना सब कुछ हो रहा था कि भूमि देवी जो अपने आप ही सब कुछ हरा भरा कर रही थी, कोई सीजन है नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वहाँ पर जो हवा है हमेशा, कोई ग्रीष्म ऋतु भी हो लेकिन हवा ठंडी बह रही है, अभी हम जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में कितनी गर्म वाफ लगती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु उसमें ही ठंडी हवा बह रही है, बारिश नहीं फिर भी बारिश आ रही है, सब कुछ जो है, और कोई हिरण्यकश्यप ऑर्डर नहीं कर रहा है, अपने आप ही सारे देवता जो है उनकी उनको खुश रखने लिए उनकी इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। और इस प्रकार से इतनी दहशत बढ़ने लगी कि देवता अंततः भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी ने तो वर दे दिया भी, इसको हिरण्यकश्यप को कोई नहीं रोक सकता है, आप ही कुछ उपाय कीजिए। तो भगवान विष्णु सारे देवताओं से कहते हैं कि अगर ये भय से आपको मुक्त होना है तो मैंने भागवत में पहले ही बता के रखा है क्या करना है। यस्यावै स्रुवमानायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पतते पुंसां शोक मोह भयापह। अगर आपको शोक से मुक्त होना है, भय से मुक्त होना है या भविष्य के डर से मुक्त होना है तो क्या करना है, यस्यावै स्रुवमानायां आप क्या करो, भगवान की लीलाओं को श्रवण करना शुरू कर दो। भगवान विष्णु कहते हैं कि आप मेरे भक्त बनो, मन मना भव मत भक्त मध्याजी माम नमस्करो, मेरा गुणगान करो, लीला का श्रवण करो, नामस्मरण करो। और अंततः जो है भय से कैसे मुक्त होंगे, क्योंकि हिरण्यकश्यप में अहम है और अहंकार जो है, जैसे कहते हैं प्राइड कम्स बिफोर फॉल, जो अहंकार जो है पतन के पहले आता है। जीवन में जब भी भगवान किसी को अगर पतन करना है तो उसको बहुत सारे ऐश्वर्य दे देते हैं, कोई बड़ा पद दे देते हैं, कोई बड़ी संसार का बहुत बड़ा कोई महान उसको कोई ऐसा नाम दे देते हैं। तो उसमें अगर वो विद्या विनय न संपन्न, जैसे अगर कोई विद्या प्राप्त है कोई ऐश्वर्य प्राप्त, उसके साथ अगर नम्रता ना हो तो क्या होता है, आदमी नरक की ओर पतन की ओर आक्रमण करने लगता है। तो भगवान विष्णु जानते हैं कि इसको जो ऐश्वर्य दिया है, इतनी सारी शक्तियाँ दी हैं, यही शक्तियाँ जो है अहम करके उसको मृत्यु की ओर खींच कर लेके जाएंगे। और वो कहते हैं कि ये हिरण्यकश्यप के घर में ही मैं अपना बड़ा भक्त मान भक्त भेजने वाला हूँ, उसके जीवन में उसके पुत्र के रूप में मेरा महान भक्त प्रह्लाद आने वाला है। और हिरण्यकश्यप प्रह्लाद के प्रति जब अपराध करेगा, जब वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं तीन चीज होती है, जब वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं सबसे पहले व्यक्ति की जो पुराने जितने भी आदतें बुरी आदतें हैं सब बाहर आने लगती है, इंद्रित्व की इच्छाएं हैं, कुछ हमारे अंदर दोष है सारे बाहर आने लगते हैं। हमको लग रहा है इतने साल तो अच्छा था, ये सारी इच्छा कहाँ से आने लगी, तो सारे जो दूषित इच्छाएं जो बाहर आने लगते हैं। दूसरा जो है उसका ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है, तेज नष्ट हो जाता है, और तीसरा जो है उसकी आयु घट जाती है। वैष्णव के प्रति जब हम अपराध करते हैं तीन चीज़ें होती, इसलिए वैष्णवों से किसे डर लगे ना लगे लेकिन वैष्णव अपराध से व्यक्ति को डरना चाहिए। जीवन में अगर यशस्वी बनना है, जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है, ये वैष्णव अपराधों से बचना चाहिए, भौतिक जीवन में हो या आध्यात्मिक जीवन में हो, लेकिन वैष्णव अपराध से क्योंकि तेज नष्ट हो जाता है। कितना ही बड़ा कोई प्रचारक हो, कितने बड़ा कोई प्रोजेक्ट का लीडर हो, कोई कई बड़ी हस्ती हो, वैष्णव अपराध जो है उसका तेज नष्ट कर देगी, इसकी आयु जो है अपने आप घट जाएगी, और उसका जो अंदर का जो कई वर्ष विषयाविनिवर्त नीराहार्च देहिना रस वर्जम रस परम दर्शवानिवर्त। जब हम कुछ समय के लिए जो विषय को त्याग देते हैं, जरूरी नहीं कि विषय की इच्छाएं पूरी तरह से नष्ट हो गई है। जब किसी को बुखार आता है, मलेरिया होता है, तो व्यक्ति क्या करता है, डॉक्टर बोलते ऑयली खाना बंद कर दो, कोई तला हुआ खाना नहीं है, हम लोग 10-15 दिन के लिए एक महीने के लिए वड़ा खाना भजिया खाना छोड़ देते हैं। लेकिन वड़ा खाने की इच्छा गई क्या, नहीं गई है, ढूंढते दब दवा बंद हो जाएगी, अच्छा डॉक्टर बोल ग्रीन चिट दे देगा, हम वापस खाना चालू कर देंगे। तो मतलब अंदर इच्छाएं हैं, कुछ दिन के लिए छोड़े हैं। वैसे भी हम भक्ति में आते हैं, कुछ समय के लिए हमने कुछ चीज़ों को छोड़ा है, बुरी चीज़ों को, लेकिन अंदर से वो गया नहीं है, सुप्त अवस्था में है, कभी भी बाहर आ सकते हैं, इसलिए वैष्णव अपराधों से बचना। तो एक कौन कहते हैं, भगवान विष्णु वहाँ पर कहते हैं कि हिरण्यकश्यप का अंत कहाँ से होगा, वो वैष्णव के प्रति अपराध करेगा, प्रहलाद के प्रति अपराध करेगा। क्योंकि प्रहलाद जो है इतने नम्र होंगे, वरिष्ठों का प्रति उनका आदर करना, भगवान ये संसार का ये दुख क्या है, इसको कैसे निवारण करना है, इसके प्रति उनकी जिज्ञासा, भगवान के प्रति और ज़्यादा ज़्यादा जानने की जिज्ञासा, और खास करके बुरी चीज़ों से दूर रहने का उनका जो स्वभाव है, इसकी वजह से वो सब सबके प्रति प्रेम करते होंगे और लोगों को भी बड़े वो प्रिय होंगे। इस प्रकार प्रहलाद का स्वभाव बनेगा। ये भगवान विष्णु स्वयं देवताओं से कहते हैं, और यही स्वभाव जो हिरण्यकश्यप को वो बड़ा क्रोधित करेगा। तो ये सब चर्चा हो रही थी, तो युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से पूछते हैं, ये एक मिनट रुकिए, पिता पुत्र का संबंध तो बड़ा प्यारा होता है, ठीक है, कभी कभी गुस्सा करते हैं एक दूसरे के प्रति, लेकिन एक दूसरे से प्रेम भी उतना करते हैं, लेकिन यहाँ पर हिरण्यकश्यप ऐसा क्या हो गया कि प्रहलाद में इतने अच्छे गुण है, और फिर प्रहलाद के प्रति उन्होंने क्रोधित किया, और इतना ही नहीं मारने की कोशिश की प्रहलाद को, ऐसा क्या हुआ, क्यों ऐसा उन्होंने किया। तभी उनके बारे में नारद मुनि वर्णन करते हैं कि प्रहलाद बचपन से ही जब वहाँ गुरुकुल में जाते थे, जहाँ उनके जो शंड और अमरक उनका जो गुरुकुल था उसमें वो पढ़ाते थे, और वहाँ पर इतना जो पढ़ाना था वो राजनीति, कपट करना, कैसे दूसरे का पैर नीचे खींचना, कैसा निंदा करना, कुछ कैसे भेद करना, लोगों में झगड़ा लगाना, ये सब जो है अलग अलग प्रकार से जो बताने लगे। तो प्रहलाद जब गुरुकुल में रहते हैं तो सुनते हैं, लेकिन इन चीज़ों का उनके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं होता है, और शंड और अमर प्रहलाद के गुणों से इतने प्रभावित हो जाते, इतने नम्र है, जो भी पढ़ाते हैं उसको ध्यान से सुनते हैं, और सब कुछ होमवर्क अच्छा करते हैं, तो कोई भी चीज़ को अच्छे बच्चे अच्छा लगता है। तो प्रहलाद के गुणों को देखकर उनको लगा, चलो हम प्रहलाद को हमारा बेस्ट स्टूडेंट करके राजा के पास ले जाते हैं। क्योंकि हिरण्यकश्यप को जब बताएं कि हम प्रहलाद को इतनी अच्छी तरह से सिखा रहे, कि इतने अच्छे गुण उनके अंदर आए हैं, नम्रता है, सीखने की इच्छा है, जिज्ञासा है, सब देखकर हिरण्यकश्यप बड़े होंगे और हमको थोड़ा पेमेंट बढ़ाएंगे, तो ये सोचकर शंड अमर वहाँ पर उनको खुश करने के लिए ले जाते हैं। हिरण्यकश्यप भी बड़ा प्रसन्न होता है, 5 साल के प्रहलाद है और छोटे बच्चे अच्छे ही लगते हैं, गोद में उनको पास में बुलाते हैं, गोद में बिठाते हैं, उन बालों से हाथ घुमाते हैं, बहुत अच्छा प्यार करते हैं। और पीछे और कुछ प्रवचन चल रहे लगता है, माताओं के बीच और कुछ प्रवचन दूसरा चल रहा है। तो प्रहलाद वहाँ पर हिरण्यकश्यप जैसे, प्रहलाद आपने गुरुकुल में सबसे अच्छा क्या सीखा है? तो प्रहलाद महाराज को देखकर कहते कि तत्साधु मन्ने असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् इत्वात्पातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्याद्रियश्रेत। तो कहते कि तत्साधु मन्ने असुरवर्य देहिनां, हे असुरों में श्रेष्ठ हिरण्यकश्यप अपने पिता को कहते हैं, जो इस संसार में इंद्र भोग में पड़ा है, जो ग्रह मेधी, दो आश्रम है, ग्रह मेधी, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम जहाँ पर भगवान केंद्र स्थान है, और दूसरा ग्रह मेधी जहाँ पर इंद्र भोग जो है ये केंद्र स्थान है, ऐसे स्थिति में जो गिर जाता है वो जन्म जन्मांतर दुख ही दुख भोगते रहता है। इसलिए अगर व्यक्ति को इस दुखी अवस्था से बाहर आना है, उसे क्या करना चाहिए, वनम गतो यत, वन की ओर निकलना चाहिए, हरि का आश्रय लेने के लिए वन के उधर, कम से वन में वृंदावन की ओर निकलना चाहिए, और वृंदावन में जाकर भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के शरण लेने चाहिए। तो जैसा ही कौन प्रहलाद कहते हैं भगवान विष्णु के कृष्ण की शरण लेने चाहिए, वृंदावन की ओर जाना चाहिए, हिरण्यकश्यप जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, अरे ये मेरे महल में, मेरे आश्रम गुरुकुल में एक कोई मेरे शत्रु घुस गया है और छोटे से बालक की बुद्धि को भ्रष्ट किया है। क्षण अमर का आप जरा देखिए, कोई तो ये आश्रम में गुरुकुल में आकर मेरे बच्चे को बिगाड़ रहा है, क्योंकि हिरण्यकश्यप विश्वास नहीं कर पाया कि प्रहलाद मेरे बच्चे के मुख से ऐसा कुछ आ सकता है। उसके लगा किसी ने तो उसको ब्रेन वॉश किया है इसलिए ऐसा बोल रहा है। उनको कहते आप लेके जाओ और उसको अच्छी तरह से पढ़ाओ और ये भी देखो कोई मेरा शत्रु आकर वहाँ पर कुछ तो इसकी बुद्धि को बिगाड़ रहा है, ध्यान दो अच्छी तरह से। और शंड अमर को वापस प्रहलाद को ले जाते हैं और वहाँ जाकर उनको कहते कि प्रहलाद ये आप कहाँ से सीख रहे हैं, हमने तो आपको कभी भक्ति के बारे में विष्णु के बारे में कभी पढ़ा नहीं, ये आप कहाँ से सीख रहे, कहाँ से आपको ये सब आता है। और प्रहलाद कहते हैं कि देखो आप ये जो पढ़ाते हैं कि कपट करना चाहिए, दूसरे को लोगों के साथ मैत्री करनी चाहिए, फिर उसको धोखा देना चाहिए, धोखे से मारना चाहिए, ये सब जो क्यों करना चाहिए, हम सब जो है भगवान के ममई अंश जीव लोग जीव पथ सनातन, सनातन काल के लिए हम भगवान के अंश हैं, सबके अपने हृदय में परमात्मा क्योंकि भगवान रहते हैं, कैसे हम दूसरे को धोखा देना चाहिए, क्यों हमको एक कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से वो कहते हैं, कहते कि मुझे जो आकर्षण भगवान के प्रति, जैसे कोई लोहा जो है स्वभाव की रीत से वो किसकी ओर, चुम्बक की ओर आकर्षित होता है, वैसे स्वाभाविक मैं भगवान कृष्ण के प्रति, विष्णु के प्रति आकर्षित हूँ। मैं क्यों अपने आप को बढ़ाने रहा हूँ या मैं अपने आप को मैं कोई वर्णन ही करना चाहता हूँ। इस प्रकार से जब कहते हैं तो छंद अमर क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं कि ये जो हिरण्यकश्यप का जो दानव वंश है, ये चंदन का जो कोई वन होता है, चंदन का वन होता है, यहाँ पर खाली चंदन के वृक्ष है, सुगंधित वृक्ष है, कौन ऐसा रहे दानव, और वहाँ पर है विष्णु एक कुल्हाड़ी की तरह है, कुल्हाड़ी की तरह है, और विष्णु ने क्या किया है, कुल्हाड़ी से ये वन को काटना है, दानव के वन को काटना है, चंदन वन समझते हैं इसको, उसको कुल्हाड़ी को क्या चाहिए, उसका कोई दंडा होना चाहिए ना कुल्हाड़ी को डालने के लिए, तो कुल्हाड़ी में जो दंडा डालने के लिए वो प्रहलाद को यूज़ किया है। जैसे वन में चंदन का जो वन है उसमें कोई कांटे का वृक्ष होता है, चंदन का नहीं, कांटे के वृक्ष को उन्होंने वो दांडा बना दिया है, और वो प्रहलाद को लेकर दांडा बनाकर वो कुल्हाड़ी को लेकर वो पूरी तरह से वो वन को नष्ट करने वाले है। तैसे उनको वापस जब सिखाने की कोशिश करते प्रहलाद वापस अच्छा व्यवहार करते हैं, पर वापस उनको अच्छी तरह से व्यवहार करने के लिए कहते हैं, प्रहलाद भी नम्र है, तिक्तिक शिवा कारणिका श्रुद सर्वदेही नाम अजात शत्रु व शांत साधव साधु भूषण, सारे गुणों के भंडार है प्रहलाद महाराज, तो सहनशीलता है, नम्रता है, दया भाव है, तो इन गुणों को देखकर वापस उनको लगता है शवन अमर को, तो अभी प्रहलाद को हमने पूरी तरह से अच्छा पढ़ा दिया है, उन दानों की भाषा वो बोलते हैं, तो चलो अभी वापस लेकर जाते हैं। जैसे वापस ले जाते हैं प्रहलाद महाराज को, तो वहाँ पर प्रहलाद महाराज को वापस गोद में लेते हैं और वहाँ प्रहलाद क्या आपने सिखा, अभी क्या अच्छा आपको लगा, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो कहते हैं कि हर एक मानव का जीवन का ध्येय होना चाहिए उसे भगवान विष्णु के शरण लेने के लिए ये नवविधा भक्ति का आचरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, चरणों की सेवा करनी चाहिए, अर्च विग्रह की सेवा करनी चाहिए, इस प्रकार से एक दास्य भाव में अंत आत्मसमर्पण करके हमें भगवान विष्णु को शरण जाना चाहिए। ये सुनकर ये जो हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हो जाता है, प्रहलाद को तोड़ ढकल देता है, कहते कि मुझे एक विश्वास नहीं होता है किसके प्रति, कहते आप ब्राह्मण हो, क्योंकि हिरण छंड और अमर को कहते कि आप ब्राह्मण हो, मुझे विश्वास नहीं लगता है, क्योंकि मेरे गुरुकुल के जो शिक्षक है ऐसे कभी पढ़ा ही नहीं सकते हैं, तो आप शुक्राचार्य के पुत्र होकर इस प्रकार गलत बातों को आप गलत चीज़ों को सिखा रहे हो प्रहलाद को, बड़े क्रोधित हो जाते हैं और वापस उनको कहते हैं कि एक ज्ञान आपको आता कहाँ से है। तो प्रहलाद कहते हैं जो ज्ञान है जहाँ से आपको जो ज्ञान देते हैं भगवान विष्णु, वैसे मुझे भी ज्ञान आता है, जहाँ से आपको शक्ति आती है वही भगवान उसे विष्णु से मुझे शक्ति आते हैं। कुछ वक्त प्रहलाद सारे देवता मुझे देखकर कांपने लगते, थर थर कांपने लगते हैं, मुझे देखकर सारे देवी देवता जो है उनको पसीना छूटता है और आप मुझे देखकर डरते नहीं हैं, ऐसा क्या कहाँ से आपको शक्ति आते है? तो प्रहलाद कहते हैं कि जहाँ से आपको आते वहीं से मुझे भी आते, भगवान विष्णु से सबको शक्ति आते है। तो बड़े क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि आप जो असुरगण है उनको कहते हैं कि आप इसकी हत्या कर दो, अभी कभी इसको मार डालो, क्योंकि ये पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, दूषित हो चुका है। जैसे अपने शरीर का कोई अगर अंग दूषित हो जाता है और रोग अगर पूरी तरह से अच्छा नहीं हो सकता, रोग जब अपने पूरे शरीर में फैलने लगता है तो कभी कभी शरीर के किसी अंग को काटना पड़ता है। पूरे गांव को कोई अगर घर एक नष्ट करने लगता है, दूषित करने लगता है, घर का कभी कभी हद पार करना पड़ता है। तो वैसे ये प्रहलाद जो है पूरे दानव समाज को जो है दूषित करेगा, तो अच्छा है इसको नष्ट कर देते हैं। और इस प्रकार से उनको शस्त्र अलग अलग प्रकार के त्रिशूल के द्वारा, तलवार के द्वारा, गदा के द्वारा उनको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा प्रहलाद क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार भगवान के स्मरण में इतने समर्पित हो स्मरण हो जाते हैं कि उनको याद भी नहीं कि कौन तलवार मार रहे, कोई त्रिशूल चुभा रहे है, कुछ पता नहीं चलता है। तो वापस लेते हैं, वहाँ पर शस्त्र से मरते नहीं हैं, हाथी के पास ले जाते हैं, जैसे हाथी के पास ले जाते हैं और जो हाथी क्रोधित है उसको नशा देकर उसको इतना पूरी तरह से भड़का रखा है, ऐसे हाथी के पैरों में डाल देते हैं और हाथी दौड़ कर आता है कि ऐसा लगता है बस अभी प्रहलाद को पूरी तरह से कचूमर बना देगा, पैरों से पूरी कुचल देगा। तो हाथी जैसे ही उनके पास आता है, हाथी दोनों पैर खड़ा करके उनको नमस्कार करता है, सूंड से उनको पैरों को कुचलने के बजाय सूंड से ऊपर उठाकर अपनी पीठ पे बिठा देता है हाथी। तो सारे जो दानव है वो अचरज हो जाते हैं, कैसे हो जाता है, शस्त्र उनको चूकते नहीं है, हाथी को कुचलने के बजाय हाथी अपने पीठ पे बिठाता है, फिर वापस उनको बोलते कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, हम लोग को समुंदर के तल पर जाते, समुंदर में ले जाते, पूरे नीचे ले जाते हैं, वहाँ पर छोड़ जाते कि उनको कोई मछली आकर खा जाएगी, कोई प्राणी आकर खा जाएंगे कुछ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वापस समंदर के ऊपर चल के वापस प्रहलाद बाहर आ जाते हैं, फिर वापस उनको एक ही एक प्रहलाद अपने स्मरण को छोड़ते नहीं हैं। तो भक्त को बड़ी सीख यहाँ से मिलते हैं, अपने जीवन में कितने भी संकट आ जाए, कितने भी तकलीफ आ जाए, लेकिन कृष्ण स्मरण को छोड़ना नहीं है। कृष्ण स्मरण ही हमें शक्ति देगी कितना भी संकट है, तकलीफ है, उससे उभारने के लिए। तभी वो कहते कि होली का जो हिरण्यकश्यप की बहन है वो आकर कहते कि अरे आप इतने क्यों चिंता करते हो, मुझे ब्रह्मा जी से वर है कि अग्नि मुझे जला नहीं सकता, तो मैं एक काम करती हूँ, आप बड़ी चिता रच दो, मैं चिता के ऊपर प्रहलाद को लेकर गोद में बैठ जाती हूँ और जैसे अग्नि जलेगी तो मुझे तो वह अग्नि कुछ करेगी नहीं कि प्रहलाद जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, इस प्रकार से हम प्रहलाद को मार देंगे। तो बड़ी चिता को बनाते हैं और वहाँ पर होली का हिरण्यकश्यप बहन ऊपर जाकर बैठती है, होली को जलाते हैं और इतनी जोर से चिताएँ जलने लगती है, ज्वाला भड़कने लगती है। देखते देखते जो होली का जो है अंदर बैठी थी वो चिल्लाने लगती है, जोर जोर चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, लेकिन इतने जोर से चिता जलाई थी कि कोई बचा नहीं सका, और होलिका जो थी वो जलकर राख हो गई, और प्रहलाद अग्नि से जलकर अग्नि से बाहर सहजता से आ गए, तो अग्नि जला नहीं सके। तब से हम होली मनाते, होली के दिन ये कथा पढ़नी चाहिए। हम लोग खाली होली जलाते हैं और कुछ शक्कर कंडे खाते बस हो गया नहीं, तो आपको कई जगह पुरान पोली भी खाते हैं। तो यहाँ होली का एक होली के द्वारा उनको अग्नि के द्वारा नष्ट करने की कोशिश करते हैं, पर्वत के ऊपर से ढकल देते हैं, विषारी सर्प के बीच में रख देते, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं होता है। आखिर प्रहलाद हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हो जाता है, तो ये अचंड और अमर करते आप इतनी एक बच्चा है क्यों इतना गंभीर ले रहे हैं, इतनी सीरियसली लेने क्या आवश्यकता है। लेकिन फिर भी हिरण्यकश्यप उनको कहते कि प्रहलाद आप ही विष्णु विष्णु कहते हो, विष्णु है कहाँ। तो प्रहलाद महाराज कहते कि सर्वगत मेरे जो विष्णु है सब जगह पर, ऐसे कोई जगह नहीं जहाँ पर मेरे भगवान नहीं है, परमात्मा के रूप में सब जगह सब जीवों में है, क्षण क्षण कण कण में है। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हो जाता है कि उनको मारने के लिए धड़ से सर अलग करने के लिए तलवार लेकर इतने गुस्से से आ जाता है, तलवार से प्रहलाद का सर धड़ से अलग करने ही वाला है, उस बीच में खंभा आ जाता है और खंभे को इतना क्रोधित, पहले खंभे को उड़ा देता है, इतने जोर से तलवार खंभे को मारता है, लेकिन खंभे से इतनी जोर से आवाज़ होती है कि वहाँ खंभा टूट जाता है, और वहाँ ऐसे भयानक आवाज आती है, और वहाँ खून प्रकट होते खंभे से, नरसिंहदेव भगवान की, भगवान नरसिंहदेव इतना खंभा तोड़कर, ऐसा नहीं कि वो खंभे में नरसिंहदेव का घर था, ड्रामा के समय कभी कभी नरसिंहदेव को पीछे रखते खंभे के पीछे, वो ड्रामा में होता, लेकिन यहाँ पर भगवान नरसिंहदेव अपने भक्त का रक्षण करने के लिए, प्रहलाद ने कहा कि इस खंभे में मेरे भगवान है, तो क्षण में भगवान नरसिंहदेव उस खंभे में प्रकट हो गए। जब हम अर्चवीर की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ऐसा ही होता है, गुरु महाराज जो पत्थर की बनी मूर्ति है, लोहे की बनी मूर्ति है, उस मूर्ति से भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे वृंदावन बिहारी, कृपा करके इस मूर्ति में आप आइए, इस मूर्ति में आप विराजमान होइए, क्योंकि हमारे भक्त आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो गुरु महाराज जब प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना का उनका वचन रखने के लिए भगवान वृंदावन बिहारी राधा रानी गौरांग महाप्रभु उस मूर्ति में प्रकट होते, उसे कहते प्राण प्रतिष्ठा। और भगवान तो वैसे नरसिंहदेव प्रहलाद के वचन के लिए वहाँ पर, इसलिए भगवान का एक नाम है अच्युत, जो अपने भक्त के शब्द को कभी गिरने नहीं देते, उसे कहते अच्युत। तो भगवान नरसिंहदेव उस खंभे से प्रकट होते हैं, और हिरण्यकश्यप वो जो तेज आता है भगवान नरसिंहदेव से, ऐसा तेज होता है उनकी आंखें जो है जैसे कोई सोना तप्त सोना होता है ना, ऐसे आंखों से उनका तेज निकलता है, और पूरे शरीर से ऐसे तेज निकलते हैं कि आँख जो हिरण्यकश्यप आंखें दीप पूरी तरह से, जैसे कोई हम लोग रोड पे जाते हैं सामने से ट्रक आता है और पूरा फुल लाइट लगा के आता है, तो हमारी आँखें अपने आप मुंद जाते हैं, कुछ दिखता नहीं, वैसे हिरण्यकश्यप आँखें पूरी तरह से मुंद गई और कुछ देख नहीं पा रहा है हिरण्यकश्यप। और इस प्रकार से उनके म्यान जो ये जो है मान जो है पूरी तरह से जो बादल है उसको अस्त व्यस्त कर रहे हैं, उनका जो चेहरा जो है उसे तेज निकल रहा है, जीवा जो है जैसे कोई तलवार जो है सब तेज से तलवार घुमाता है, वैसे उनकी जीवा जो है ऐसे एक तलवार की तरह घूम रही है, और उनका जो कान लंबा वजन की तरह है, और उनके जबड़ा जो है मुख जो है कोई बड़ी पहाड़ में बड़ी गुफा है उस तरह से उनका मुख है, और बड़ी छाती है, कमर छोटा है, और उनके हाथ जैसे कोई बड़ी सेना आ रही है, सीना के ऐसे एक हाथ हिलता है ऐसा लगता है कि बड़ी सीना आ रही है, और सारे जितने वहाँ पर दानव आते हैं उनके हाथ के नीचे सारे उनका दहन करते करते वो आगे आते हैं। इस प्रकार हिरण्यकश्यप देख कर समझ नहीं पा रहा है ये क्या है, क्या ये चीज़ क्या है। अभी तक इतने सारे बड़े बड़े असुर देखे, अस्त चित्र विचित्र असुरों को देखा, लेकिन ये क्या प्राणी कुछ हिरण्यकश्यप समझ नहीं पा रहे हैं। और इस प्रकार वो अपनी गदा से मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जैसा बड़ा हेलोजन होता है, कोई छोटा सा बारिश में कोई आता है पंखे और हेलोजन को उधर जाता है गिर जाता है, वैसे गदा से मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हिरण्य नरसिंह देव को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और इस प्रकार से नरसिंह देव और हिरण्यकश्यप जो बीच में थोड़ा युद्ध होता है, लेकिन जैसे कैसे जैसे गरुड़ जो है सर को पकड़ते हैं और सर को पकड़ कर छोड़ देते हैं, सर को लगता है अभी फ्री हो गया मैं, लेकिन गरुड़ जो है वापस झड़प लेते हैं, जैसे कोई सर्प जो है वो चूहा को पकड़ता है छोड़ देता है, पकड़ता है छोड़ता है, उस तरह हिरण्यकश्यप पकड़ते फिर वापस छोड़ देते पकड़ते छोड़ते। नरसिंहदेव मजा ले रहे थे लेकिन देवता टेंशन में आ रहे थे, उनको लग रहा था अरे छूट गए, और हिरण्यकश्यप को लग रहा था अभी तो मैं स्वतंत्र, जब हिरण्यकश्यप को छोड़ते थे हिरण्यकश्यप लगता तो मैं फ्री हो गया, मैं तो अभी मतलब मैं तो आसान से नरसिंहदेव को हरा सकता हूँ। इस संसार में जीव भी ऐसा होता है, जीव को लगता है प्रकृति क्रियमाण गुणय कर्माणि सर्व अहंकार मूढ़ात्मा, इन संसार मैं संसार में दुनिया का संसार को चला रहा हूँ, मेरी वजह से सब कुछ चल रहा है, मेरी वजह से घर चल रहा है। लेकिन कोरोना में देखा था कोई सब कुछ बंद था फिर भी दुनिया चल रही थी, तो सृष्टि के द्वारा भगवान सब कुछ चला रहे हैं, लेकिन अहंकार में हम सोचते हैं मैं सब कुछ चला रहा हूँ, लेकिन चलाने के लिए हमको जीवित रहने के लिए जो सांस है ये भी तो भगवान ही दे रहे हैं ना, जीवित रहने के लिए जो सूर्य प्रकाश ये भी तो भगवान ही दे रहे हैं, कहाँ हमारा गवर्नमेंट तो सूर्य प्रकाश क्रिएट नहीं कर रहा है, ना तो हमारा कोई कंपनी हमारे लिए कोई ऑक्सीजन बना के दे रहे, सब कुछ सृष्टि के द्वारा भगवान हमें जीवित रख रहे। तो लेकिन अहंकार की वजह से हम सोचते मैं ही महान हूँ, तो इस तरह हिरण्यकश्यप सोचता है। लेकिन तभी नरसिंहदेव देखते कि देवता थोड़ा टेंशन में आ रहे हैं, तो तुरंत झपट से पकड़ ले, बीच में अचानक से एक हिरण्यकश्यप गायब हो जाता है, और भगवान ढूंढते ढूंढते दिखता नहीं हिरण्यकश्यप कहाँ पर है। बाद में पता चलता है कि उनको नाखून के अंदर वो छुप के बैठा था, नाखून जो होता ना थोड़ा बाहर आता है उसमें हिरण्यकश्यप छुप के बैठा था। तो सोचिए नरसिंह देव का साइज क्या होगा, अभी हम लोग उग्र स्तंभ में जाते हैं अवलंब में, वो चढ़ते चढ़ते सांस पूरा हाँपने लगता है, तो सोचिए नरसिंह देव जब प्रकट हुए वो तो खाली एक खंभा है हिरण्यकश्यप के महल का उग्र स्तंभ, सोचिए वो महल क्या होगा और नरसिंह देव का साइज क्या होगा। तो ऐसे एक नरसिंह देव हिरण्यकश्यप को पकड़ते हैं, आपको अभी लेट हो रहा है हम थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, तो पकड़ लेते हैं, और जैसे जैसे ब्रह्मा जी ने उनको वर दिए थे कि कोई भी सृष्टि का प्राणी आपका वध नहीं कर सकता, हत्या नहीं कर सकता, ये कौन थे, सृष्टि के बाहर के थे, ये तो स्वयं नारायण आए थे, स्वयं विष्णु आए थे, जो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी को उन्होंने बनाया है, ब्रह्मा जी ने उनको नहीं बनाया है, तो एक ब्रह्मा जी के सृष्टि से बाहर है। फिर ये नर कोई मानव नहीं है, प्राणी नहीं, नर सिंह है, और उनको कहा था कि शस्त्र से अस्त्र से नहीं, दिन में नहीं रात में नहीं, आकाश में नहीं जमीन पर नहीं, घर के अंदर नहीं बाहर नहीं। तो भगवान नरसिंहदेव कहाँ गए, हिरण्यकश्यप के महल के द्वार पे गए, महल के अंदर नहीं बाहर नहीं, उमरा होता दरवाजे में, फिर वहाँ पे अपने गोद में उन्होंने ले लिया, क्योंकि आकाश में नहीं जमीन पे नहीं, गोद में ले लिया, और फिर शस्त्र से नहीं अस्त्र से नहीं, अपने नाखून से दुनिया का सृष्टि का सबसे सर्जरी भगवान ने वहाँ पर किया हिरण्यकश्यप का, और उन्होंने अपने गोद में रखकर हिरण्यकश्यप के आंतरों को पोट को चीर दिया और आंतरों को बाहर निकाल कर उसको गले में घुमा दिया हार की तरह, क्योंकि हिरण्यकश्यप को स्वागत नहीं कर पाया था ना, तो भगवान ने खुद ही अपने हिरण्यकश्यप हाथों से हार पहन लिया। और फिर लेकिन इतना क्रोध था, हिरण्यकश्यप ने इतनी तकलीफ दी थी प्रहलाद को, क्रोध था, तो सब जोर ढकल दिया, आपका ऐश्वर्य है, आप बड़े दानव होंगे, मेरे लिए कुछ नहीं सके, ढकल के लात से पछाड़ दिया। और भगवान जो रास यहाँ संता किसका हिरण्यकश्यप उस पे आकर बैठ गए, लेकिन अभी भी एक क्रोध में है। तो ब्रह्मा जी शिव जी कोई भी आगे जाने के लिए देरिंग नहीं कर पा रहे, इतना ऐसा रौद्र रूप तो कहीं देखा नहीं था, उग्र रूप है। तभी लक्ष्मी को कहते कि आप जाओ, आप तो हमेशा संगिनी हैं। तो लक्ष्मी कहते कि वैकुंठ में ऐसा रूप तो कभी देखा ही नहीं मैंने, मैं नहीं जा सकते हैं। लक्ष्मी भी नहीं जा पाई। ब्रह्मा जी कहते तो मुझे तो बड़ी पढ़ने वाली अभी, क्योंकि मैंने तो हिरण्यकश्यप वर दिए थे सारे, और मेरी वजह से इनको ये सब करना पड़ा, नरसिंह रूप धारण करना पड़ा, इसलिए मैं तो आगे नहीं जाऊँगा। शिव जी कहते ये तो मैं भी नहीं कर सकता। आखिर ब्रह्मा जी कहते प्रहलाद आपके लिए प्रकट हुए हैं, आप बाल इतने बाल भक्त है, इतनी भक्ति से आपने सेवा की है, इतना स्मरण किया है, तो आपसे बड़े प्रसन्न हैं, आप जाकर उनको शांत कर सकते। और तभी प्रहलाद महाराज आके जाते हैं और भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना करते हैं, श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय श्री नरसिंह प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग। आगे की प्रार्थना अभी कीर्तन में होगी। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज उनको प्रार्थना करते अलग अलग, देखिए मैं तो असुर कुल में जन्मा हूँ, मुझे क्या पता है भक्ति क्या है, सब क्या है, आप तो ब्रह्मा जी शिव जी इनसे भी शांत नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी आप मेरे जैसे असुर के लिए भी आप प्रकट हुए हैं, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार से अलग अलग रूप से प्रार्थना करते हैं। और सबसे पहले प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, जब नरसिंहदेव प्रसन्न हो जाते कहते कि मेरे पिताजी ने आपको बहुत तकलीफ दी है, कृपा करके मेरे पिताजी को क्षमा कर दो। तो क्या क्षमाशीलता होनी चाहिए वैष्णव में, वैष्णव कितना क्षमाशील होना चाहिए कि जीवन भर तकलीफ दिए हैं उसके पहले सबसे क्षमा कर दे। भगवान श्री रामचंद्र कैको को जब अयोध्या में सबसे पहले कैकेयी को उन्होंने स्वीकार किया। तो ये प्रहलाद महाराज से हम सीख सकते हैं। और आज बहुत ही महान विशेष दिन है कि हम भगवान नरसिंहदेव को प्रार्थना कर सकते हैं कि इस जीवन में एक हम श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में एक जो कार्य श्रील प्रभुपाद ने एक चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन सारे संसार में प्रचार करने के लिए जो धारण किया है, और जो उनके जो शिष्य के अनुसार और इस्कॉन के अनुयायी जो कार्य लेकर जा रहे हैं, इस आंदोलन को रक्षा करें। ये जो आंदोलन है ये संसार के लिए अभी एक ज्योत है, जो ये जो भक्ति मार्ग है यही संसार को अच्छी तरह से मार्ग पे ले जा सकता है। तो भक्तों का रक्षण, आंदोलन का रक्षण, और अपने ही जीवन में हम सारे नियमों का पालन कर सके, और अच्छी तरह से कोई वैष्णव अपराध न करके हम वैष्णव की सेवा कर सके, हमारी इसलिए जो हमारी जो प्रार्थना है, हमारे जो प्रतिज्ञा है, उसका रक्षण करें, ऐसे हम भगवान नरसिंह से प्रार्थना करें और उनके सेवा में रहे, श्रील प्रभुपाद के सेवा में रहे, इस प्रकार से हम प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान नरसिंह देव भगवान की, नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने इतना सुंदर नरसिंह देव के ऊपर कथा बताया, उनको धन्यवाद देंगे हम जोर से 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। अभी राधा वृंदावन बिहारी जी नरसिंह देव का आरती होगा। ललिता भवन में प्रसाद वितरण चालू हो चुके हैं, आप आरती में भाग ले सकते हैं, उसके पश्चात आप प्रसाद के लिए जा सकते हैं। हरे कृष्णा।
श्री नरसिंहदेव भगवान की, श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा।